संबंध। पूर्व श्लोक में समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात बताई, अब आगे के श्लोक में व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। सर्वयो निषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। व्याख्या। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तियाः। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये चार खानी अर्थात स्थान है। इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं उन सब की आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक अक्षर मिलतन एक से देखे देश अनेक। अर्थात पगड़ी भाग्य वाणी माने कंठ स्वभाव आकृति शब्द विचार शक्ति और लिखने के अक्षर ये सभी दो मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं उन सब की आकृति अलग अलग है। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत आदि को भी यहाँ सर्व योनिषु पद के अंतर्गत ही ले लेना चाहिए। तासाम ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रदपिता। उपर्युक्त चार खानी अर्थात 84 लाख योनियां तो शरीरों के पैदा होने के स्थान है और उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान महद ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीव रूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। संपूर्ण प्राणियों में वस्तुतः एक ही परमात्मा विद्यमान है। 13वें अध्याय का 2वां श्लोक। इस बात को एक दृष्टांत से समझाया जाता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता तथापि वह बुद्धि को दार्ष्टांत के नजदीक ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना माने लंबा धागा और बाना माने आड़ा धागा से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़े के संपूर्ण तंतुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उनके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत में कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र ये शरीर है और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्म तत्व अलग अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में संपूर्ण संसार में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। परिशिष्ट भाव 84 लाख योनिया, देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बालक ग्रह स्थावर जंगम जलचर थलचर नवचर जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज आदि सभी सर्व योनिषु पद के अंतर्गत लेने चाहिए। इसी बात को 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय पदों से और 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में यावत् संजायते किंचित् सत्वम् स्थावर जंगमम् पदों से कहा गया है। या मूर्ति शब्द का अर्थ है शरीर। इसके अंतर्गत मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त दोनों शरीर ले लेने चाहिए। पृथ्वी जल और अग्नि मूर्त है, वायु और आकाश अमूर्त है। वायु प्रधान शरीर होने से भूत प्रेत पिशाच भी अमूर्त है। भगवान ने पहले दूसरे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होता, और तीसरे चौथे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध रहने से जन्म मरण होता है। इसी तीसरे चौथे श्लोक की बात को आगे 5वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से कहा है।